एवात्मनात्मानम् वेथ त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. Chant one more time. Swayamevatmanatmanam vetatvam purushottama bhutabhavan bhutesha deva deva jagatpate. हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं. बहुत सुंदर. यानी कि पहली लाइन से आप क्या समझ सकते हैं कि भगवान को केवल भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं. और कैसे जानते हैं? पढ़ा गया आपने अभी, अंतरंग शक्ति से, माया शक्ति के द्वारा नहीं. यानी भगवान को जानने का एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी के संपर्क में आए. ठीक है, हिंदी और कौन पढ़ सकते हैं? अनुप्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ.
परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं. आसुरी या नास्तिक प्रकृति
ये वाले, थोड़ा समझ लेना चाहिए इस लाइन को. जब भी हम भक्ति करते हैं उसी समय हम लोग भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, तो ये भक्ति है. भक्ति के माध्यम से हम भगवान के संपर्क में आते हैं, यानी अंतरंग शक्ति के आश्रय में आते हैं, और उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, और फिर हम भगवान को उतना समझ पाएंगे जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध हुआ है. भगवान कृष्ण बोलते हैं संबंध में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिदानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्माद् चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम. जैसे आंखों पे आप कोई अंजन लगाते हैं ना, अंजन समझते हैं, कोई ऑइंटमेंट, तो जिस तरह से ऑइंटमेंट लगाते हैं तो आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की देखने की शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से भगवान की पुण्य गाथा, पुण्य कीर्ति, पुण्य ग्लोरी से कहना चाहिए, जितनी मात्रा में हम सुनते हैं हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भगवान के सूक्ष्मत्व को समझ पाते हैं. तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्. आप उदाहरण समझ रहे हैं, जैसे अंजन लगाने से आंखें की ज्योति बढ़ती है, हम और ठीक से देख पाते हैं, वैसे ही भगवान के श्रवण कीर्तन करने से हम लोग सो जाते हैं, नहीं, हम लोग भगवान को समझ पाते हैं, देख पाते हैं. और ध्यान देना चाहिए कि पुण्य का अर्थ केवल पुण्य के अर्थ में नहीं लेना चाहिए. पुण्य का अर्थ है पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला. क्या है पुण्य का अर्थ?
शुद्ध करने वाला
या पवित्र करने वाला. तो हमारे पवित्र कार्य समझ सकते हैं, हृदय की जो गंदगियां हैं उसको सफाई होती है और इसके द्वारा व्यक्ति भगवान को समझ पाता है. ये 11वें स्कंद से भगवान बताते हैं. आगे पढ़िए. आसुरी या
नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते.
हाँ, उनके सामने कृष्ण आ भी जाए तो भी नहीं जान सकते. मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद है, समझते ना, मोतियाबिंद कैटरैक्ट, तो उसके सामने अगर सूर्य आ जाएगा तो क्या समझ जाएंगे कि वो सूर्य है? तो मोतियाबिंद की उपमा किसे दी जा रही है? नास्तिकता से. भगवान के प्रति कोई प्रीति नहीं है तो भगवान सामने भी हो तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. जैसे इस संबंध में उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान अपने को कितना भी प्रदर्शित करें, जो अभक्त है वो समझ नहीं पाते, और भगवान अपने को कितना भी छुपाएं भक्तों से वो छुप नहीं पाते. छोटा सा उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु अपने को छुपाने का प्रयास करते, देखिए मैं भगवान नहीं हूं. तो एक बार अद्वैताचार्य सबको लेकर के सारे भक्तों को इकट्ठा करके और जोर जोर से चलने लगे, जय जतिनंदन गौर हरि, आप भगवान हैं परमेश्वर है, ऐसे करके। तो श्रीवास ठाकुर को एक बार जब उन्होंने भगवान को गुणगान किया था महाप्रभु ने, तो उनको डांट दिया था, नहीं आप समझ करिए। तो अब श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के सामने जाते हैं और सूर्य को ऐसे हाथ से छुपाने का प्रयास करते हैं। सूर्य दिखते हैं ना, सूर्य समझ रहे ना, सूर्य को हाथ से आप नहीं छुपा सकते। तो महाप्रभु कहते हैं क्या कर रहे हैं, कह रहे मैं सूर्य को अपने हाथ से छुपाने का प्रयास कर रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि आप भगवान हैं, अभी तक तो आप अपने को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अब आप बताइए क्या करेंगे, इतने सारे भक्त आकर के आपका गुणगान कर रहे हैं कि आप भगवान हो, अब किसको चुप कराएंगे। तो वहां पे बार बार वही शब्द आता है, भगवान थोड़ा सा मुस्कराते हैं फिर अंदर चले जाते। चैतन्य महाप्रभु बहुत स्वीट है, चैतन्य भागवत में पास टाइम आता है। तो भक्त लोग भगवान को वैसे ही समझ लेते हैं, चाहे भगवान कितना भी समझाने का अपने छुपाने का प्रयास करें, जैसे एक मस्क डियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कस्तूरी मृग, वो कहीं भी जाता है तो जिसके पास नाक होगी उसी खुशबू को गंध को पकड़ लेता है। तो भक्तों की स्थिति ये है। फिर वही श्लोक याद दिलाऊंगा, भगवान के भक्त हृदय में भगवान को देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो जहां भी भगवान होते हैं कितना भी छुपने का प्रयास करें भगवान को तुरंत पकड़ लेते। ठीक है, आगे पढ़िए।
ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता,
आपने कभी सोचा है कि जो लोग भगवान को नहीं जानते वो भगवान के ऊपर टीका करते क्यों हैं? जैसे मैं बोलूं कि क्या आप मुझे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ बता सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं पता। यहां तो हम लोग ईमानदारी करते हैं ना, लेकिन किसी को समाज पूछे भगवान कौन है और तुरंत उसकी टीका चालू हो जाएगी। तो आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं, क्या उत्तर है ना? अभी आपसे मैंने पूछा, सही बताऊं तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग स्वीकार कर लेते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन भगवान के बारे में क्यों थ्योरी देते रहते हैं लोग?
प्रतिष्ठा के लिए।
प्रतिष्ठा के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर मैं इनसे पूछूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो प्रभु जी भी प्रयास कर सकते हैं ना प्रतिष्ठा के लिए कुछ बताएं, तो क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाले को पता हो सकता है। और भगवान के बारे में थ्योरी क्यों देते हैं लोग? क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, और फिर बाद में बोलेंगे भगवान को किसने देखा है, फिर गोबर लीप देते हैं सारी बात करते। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग टीका इसलिए करते हैं, जैसे हमने बताया प्रतिष्ठा के लिए, लोग सोचे कि बहुत बड़े विद्वान है भाई, गीता पे बहुत बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, गीता पे ये हो रहा है, लेकिन भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो ये आश्चर्य है। और इस प्रकार की टीका सुनना ये हमारे लिए परम पातक है, क्योंकि भगवान के चरणों में श्रद्धा है उसको ये खा जाती है। ठीक है, यस।
भगवद गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया।
तो आप इस क्लास में क्यों बैठे हैं? क्या यहाँ पे कृष्ण क्लास दे रहे हैं या शुभ कृष्ण क्लास दे रहे हैं? क्यों कृष्ण से समझना चाहिए, तो फिर आप मेरी क्लास देने की क्या जरूरत है? क्या है ना बात इंपॉर्टेंट,
शास्त्रों की बात को आप एज इट इज रिपीट कर रहे हैं।
यस, जब हम किसी के माध्यम से सुनते हैं जो बिल्कुल वैसा ही रिपीट करते हैं जैसा कृष्ण बोल रहे हैं, तो एक कृष्ण से सुनना ही कहलाता है। और इसीलिए आप देखिए प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ करके कितने लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। ठीक है, जैसे भगवान गीता बोले उसके बाद अर्जुन ने नहीं कहा परमपिता परमात्मा निर्विशेष निराकार को मेरा प्रणाम है, नहीं बोल रहे ना, यहां बोल रहे ना कि आप भगवान हैं। तो ये कंक्लूजन पे भक्त आ जाना चाहिए गीता सुन करके। अगर किसी को पूछो, आप किसी को वहां जाके गांव में पूछना भगवान कौन है, परमपिता परमात्मा निरंकार, तो इस कंक्लूजन पे गीता सुनकर के व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। कौन है हमने क्या सुना भी, परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, आप एक व्यक्ति, तो ये कंक्लूजन पे गीता सुन के आना चाहिए। और जो टीकाकार इस कंक्लूजन पे नहीं आया उसको नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ जी,
इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए।
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आस्तिक का अर्थ कौन बता सकता है? आस्तिक का अर्थ
जो शास्त्रों को मानता हो।
वेरी नाइस, नास्तिक मतलब
शास्त्रों को नहीं मानता।
तो अमेजिंग बात है कि नास्तिक है उस बाय डेफिनेशन वो शास्त्र को नहीं मानता है और उसके बाद टीका लिख रहा है। आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रही? मैं पहले ही मान रहा हूं कि शास्त्र गलत है तो फिर टीका क्यों लिख रहे हो तुम? आपको कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें? मैं मान रहा हूं कि आपने जो कुछ, मान लो आपने कोई रिसर्च लिखी, कुछ भी लिखा, तो मैं पहले मान रहा हूं कि आपने गलत लिखा है, तो फिर मैं उस पर कमेंट्री क्यों लिखूंगा? है ना कितना इलॉजिकल। इसलिए वो समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदन्ति तत्त्वविदस्, बोलिए, तत्त्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। ओके, पढ़िए।
परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य,
अच्छा एक अब मैं कठिन प्रश्न करता हूं, इन तीनों साक्षात्कारों में अंतर क्या है? और मुझे सिंपल वाला उत्तर नहीं चाहिए कि लाइट है, ट्रेन है, वो नहीं चाहिए। वाकई क्या अंतर है, उपमा मत बताइए। ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार में क्या अंतर?
ब्रह्म से भगवान की सत्य का पता चलता है।
ब्रह्म साक्षात्कार में भगवान का सत्य पता चलता है। सत्य मतलब
जो तीनों कालों
का मान चलता है। और
परमात्मा में सत्य और चित्त का,
यानी कि शाश्वतता और ज्ञानमयता। और
भगवान में तीनों, सच्चित और आनंद का।
इसमें मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कि भगवान में आनंद का अनुभव होने का कारण है, आधार है रस का आदान प्रदान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमात्मा से कोई व्यक्ति रस का आदान प्रदान नहीं करता। दास से साख्य वात्सल्य आपने सुना होगा, माधुर्य, ये कोई रस का आदान प्रदान परमात्मा से नहीं होता है। बस परमात्मा का दर्शन हो गया, ना कोई सेवा, ना कुछ, कई सुना है आपने, कोई सेवा नहीं होती। लेकिन भगवान का साक्षात्कार का अर्थ है कि भगवान से रस के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वो पांच प्रकार के रस हैं, उनका आदान प्रदान भी हो रहा है। पर आपको ये ब्रह्म तो समझ में आ रहा है कि आप निर्विशेष ब्रह्म को देख पा रहे हैं या अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भक्ति नहीं होती है। मेक सेंस? तो भगवान साक्षात्कार कैसे होगा? भक्ति के द्वारा और प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार पूर्ण रूप से होता है, रस का अनुभव कर पाते हैं। समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? सुनते रहिए, अगर मुश्किल हो रहा है तो भी आगे पढ़िए।
अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसे मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए।
क्यों 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 क्यों? अभी बताया था मैंने क्यों। माइक उनको, एक माइक प्रभु जी को दे दीजिए।
एक तो ये, अगर जब वो भगवान, जैसे भगवान कृष्ण है, उनको ये समझेंगे कि वो
अभी मैंने आपको बताया था, वो उत्तर बताइए, अभी बताया जस्ट दो सेकंड पहले।
भगवान को सिर्फ भक्ति समझ सकते,
बस सिंपल सी बात है। भगवान को आप भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। जो आनंद भक्ति का है, उसका आधार है या माध्यम है भक्ति, तो भक्ति के द्वारा ही आप भगवान के इस असीमित आनंद को अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस सिंपल उत्तर।
अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रमाणिकता की को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग
ये नहीं समझ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं हाँ भगवद गीता तो बिल्कुल सही है, लेकिन परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। अजीब से कंफ्यूजन है उनका, भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। और कहते हैं हाँ महान व्यक्ति थे, अच्छे गृहस्थ थे, सतगुण में थे, बढ़िया था। तो ये सारी बातें हैं, भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को भगवत्ता से, उनकी भगवत्ता से एकदम मनुष्यता के ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ जी पढ़िए आगे।
इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें।
अच्छा, आप अपनी बात बताइए, क्या आप समझ रहे हैं कि कृष्ण आपके जनक हैं? नहीं, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ पाते हो ऐसे? एकदम हेल्प फंस गए कि नहीं फंस गए? अगर आप भगवत गीता से ना सुने होते तो कोई तरीका था जानने का कि कृष्ण हमारे अहम बीज प्रदापिता है? है ना, माया कितनी पावरफुल, कितनी पावरफुल है। कोई अपने से तो नहीं समझ रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का अंश हूं, इतना शक्तिशाली है। वही बात यहां बताई जा रही है। यस,
इसलिए यदि कोई उन्हें भूत भवान के रूप में समझ लेता है,
भावना,
भूत भावना के रूप में समझ लेता है, तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता।
इसलिए भूत भावना का अर्थ क्या है? सबके उद्गम, ठीक है, ओके, पढ़िए।
इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है।
इंटरेस्टिंग है कि जैसे लोग यहाँ पे देवताओं के पास जाकर माथा टेकते हैं, वैसे ही देवता लोग भगवान कृष्ण के सामने जाकर माथा टेकते हैं। समझते हैं ना? आप लोगों को पता है ना, पांचवें दशम स्कंद में आता है, देवता लोग भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं असुर लोगों ने बहुत तकलीफ दे रखी है, कृपया आप अवतार लीजिए और उनका वध कीजिए। पता होगा ना आपको वध? और देवता लोग बहुत सचेत हैं कि जो भी शक्ति उनके पास है, जो भी कुछ किसी को वरदान दे रहे हैं, वो भगवान की शक्ति से दे रहे हैं। वो बहुत कॉन्शियस है इस बात को, कॉन्शियस सचित समझते हैं। तो इस प्रकार से देवता लोग के देवता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जो इस बात को सुन करके लोग देवताओं की उपासना को छोड़ करके सीधे कृष्ण की उपासना करने का प्रयास करते हैं। यस,
यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? Following in the footsteps of Arjuna, what does it mean?
भक्तों के पद चिन्हों पे चलना।
थोड़ा सा ऐसे बोलिए तो। हाँ,
भक्तों के पद चिन्हों पे चलना,
यही तो प्रश्न है। भक्तों के पद चिन्हों पे चलने का क्या अर्थ है? देखिए, पहले तो ये बताइए कि पद चिन्ह पे चलने का अर्थ क्या होता है?
उन पे श्रद्धा करके उनको फॉलो करें,
उनके ऊपर श्रद्धा करके उनको फॉलो करना। हाँ, ये अच्छा बात आपने बताई है। शास्त्रों के अलग अलग बातें होती हैं और हर एक मुनि के नाना मत होते हैं, लेकिन शास्त्रों का जो गुह्यतम भाग है वो भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट करते हैं। इसलिए महाजनो ये न कथा सपनता, सुना है आपने श्लोक? नहीं तो आप नाना, क्या कहते हैं, नाना मुंडे नाना मत, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की बात को बोल। मुंडे मतलब अलग अलग मुनि होते हैं, अपने अलग अलग मत देंगे, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं ऐसा ऐसा करके, तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो भक्त के पद चिन्ह पर चलने का अर्थ है जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की सेवा करी है, जिस तरह से कृष्ण की शरणागति उन्होंने स्वीकार करी है, जैसे कृष्ण की भक्ति उन्होंने करी वैसे हमें करना है। अब आप ये बताइए कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करने का अर्थ मैंने समझा दिया, अब अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने का क्या अर्थ है?
जो ये अर्जुन का जो निष्कर्ष है उसको ग्रहण करना।
समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवद गीता सुन करके भगवान कृष्ण को देवता के रूप में स्वीकार किया था। गलती बोल दी मैंने, शिवम, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं समझ में, मैंने क्या बोला गलत? क्या गलती बोली?
देवता ने परम,
हाँ, परम भगवान पर ब्रह्म के रूप में स्वीकार करे, वैसे ही एक भक्त को स्वीकार करना चाहिए, तब भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर होगा और तब वो भगवान को ठीक से समझ पाएगा। देखिए, तत्व में समझने का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत्व मतलब सत्यता। एक सिंपल सी बात सोचिए, एक बार हुआ था मैं इनके कॉलेज में क्लास दे रहा था और इनके कॉलेज के डायरेक्टर वहां पे आए थे, दूसरे वाले डायरेक्टर, शायद वाइस चांसलर थे। पूरी क्लास हो गई, कीर्तन वर्तन हो गया, तब तक मैं सोचता रहा कोई प्रोफेसर होंगे ये, वो आए होंगे। तो उनको मैं सत्य में नहीं समझ पा रहा था कि नहीं। फिर बाद में इनके सर ने बोला ये यहाँ के वाइस चांसलर है। तो मैंने कोई रिसर्च नहीं करी कि क्या वाकई वाइस चांसलर है कि नहीं, सर्टिफिकेट दिखाओ, ऑफिस दिखाओ, ना। लेकिन सुन करके हम उनकी सत्यता को समझ गए। मेक सेंस? किसी भी व्यक्ति को आप जानते हो, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप बताओगे, तो मैं आपके सत्यता में आपके नाम को कैसे जानूंगा? आपके द्वारा। मेक सेंस? उसी तरह से भगवान के बारे में हम सत्यता में, तत्व में कैसे जानेंगे? सुन करके। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। अन्यथा भगवान की महिमा को समझ पाना बिल्कुल एकदम जीरो, असंभव, इम्पॉसिबल। कोई प्रश्न है इस संबंध में? मैं तो स्टॉप द रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट।